दिन भर सोमवार 6 जून मैं हूं निखिल रंजन। दिल्ली से सटे दादरी में फिर गरमाया माहौल। अखलाक अहमद के परिवार के खिलाफ कार्रवाई पर शुरू हुई महापंचायत।
फैसले के लिए 20 बार दबाव बनाना और कई जगह उन्होंने दादरी में भी हमें बुलाया, अलग अलग जगह वहाँ पे बैठ के बात की। हमने उनसे यही कहा देखो ये तो सब सरताज की बात है।
मथुरा में शीर्ष अधिकारियों का तबादला। बीजेपी ने किया राज्य भर में प्रदर्शन। दुर्लभ धातुओं की अवैध खुदाई से धन कमा रहा है तालिबान। पहलवान सुशील कुमार के रियो जाने का सपना खटाई में। कोर्ट ने याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सुशील?
पूरा विचार चल रहा है इस पे कि डबल बेंच में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो जो भी होगा वो उसको।
आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश में नोएडा के दादरी इलाके में हुई एक बैठक को लेकर तनाव की स्थिति है। इस बैठक का आयोजन बिसाहड़ा गांव के लोगों ने किया था, जहां बीते साल कथित तौर पर गोमांस खाने की अफवाह के बाद भीड़ ने मोहम्मद अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में उनके एक बेटे भी घायल हो गए थे। हाल में मथुरा की एक लैब ने अखलाक की मौत के बाद जाँच के लिए भेजे गए मांस के गोमांस होने की पुष्टि की थी। बैठक में इसे लेकर ही अखलाक के परिजन पर मुकदमा चलाने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश सरकार कह चुकी है कि मथुरा जांच के लिए भेजा गया सैंपल अखलाक के घर से नहीं मिला था। गुजरात के अहमदाबाद की एक विशेष अदालत गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 9 जून को सजा सुनाएगी। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला हुआ था, जिसमें पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गए थे। विशेष अदालत ने 2 जून को इस मामले में 24 लोगों को दोषी ठहराया था और 36 लोगों को बरी कर दिया था। अमेरिका में वैज्ञानिक जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सुअरों के अंदर इंसानों के अंग तैयार करने की कोशिश में है। वैज्ञानिक सुअर के भ्रूण में इंसानी अग्नाशय उत्पन्न करने की उम्मीद में स्टेम सेल इंजेक्ट कर रहे हैं। इसके जरिए डीएनए से पैंक्रियाज बनने के लिए मिलने वाले निर्देशों को रोका जा रहा है। रिकॉम्बिक नेटिक्स रिसर्च फर्म के डॉक्टर स्कॉट फागुन कुक ने कहा कि इस तरह के अध्ययन के लिए सुअर बेहद उपयोगी होते हैं। उन्होंने कहा,
Pigs are just a lot like us, and actually that's the basis for...
सुअर बहुत कुछ हमारी तरह होते हैं। वास्तव में इंसानों में होने वाली बीमारियों के लिए सुअरों को मॉडल की तरह इस्तेमाल किए जाने को लेकर हालिया जानकारियों का आधार यही है। उनकी शारीरिक रचना बहुत कुछ हमारी तरह है। उनके गुणसूत्र बहुत हद तक इंसानों से मिलते हैं। ये थे डॉक्टर स्कॉट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जॉर्डन की सरकार ने देश की खुफिया एजेंसी के स्थानीय दफ्तर पर हुए हमले को चरमपंथी हमला बताया है। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अम्मान के करीब प्रवासी शिविर में हुए हमले को किसने अंजाम दिया है, सुरक्षा बल इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमरीका की अगुवाई वाले गठबंधन में जॉर्डन भी शामिल है। अपुष्ट रिपोर्टों में बताया गया है कि शिविर पर एक बंदूकधारी ने हमला किया। इस शिविर में फलस्तीन और सीरिया के हजारों शरणार्थी रह रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि बीते महीने हथियारों के जखीरे के साथ पकड़ा गया व्यक्ति यूरो कप में हमला करने की योजना बना रहा था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। आज कार्यक्रम की शुरुआत दादरी से करते हैं। दिल्ली से सटे दादरी में तनाव की खबर आ रही है। आपको याद होगा कि फोरेंसिक लैब ने जो दूसरी रिपोर्ट दी, उसमें अखलाक अहमद के घर के पास मिले मांस को गाय का बताया गया। इसके बाद से वो लोग जो दूसरे पक्ष से हैं, अखलाक अहमद के परिवार वालों पर मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर दादरी में इस वक्त एक महापंचायत चल रही है। मेरे सामने सलमान रावी बैठे हुए हैं, जो लंबे समय से इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रख रहे थे। आइए उन्हीं से पूछते हैं। सलमान, क्या कुछ हो रहा है वहाँ इस वक्त?
देखिए, काफ़ी देर से शुरू हुई बैठक और उसमें जैसा कि स्थानीय अधिकारियों और जो वहाँ के लोग हैं उनका कहना है, जिनसे मेरी बात हुई, कि 300 के आसपास लोग उस बैठक में जमा थे जो एक मंदिर के प्रांगण में हो रही थी। हालांकि निषेधाज्ञा लगा दी गई थी वहाँ पर, जब ये आह्वान किया गया था कि आसपास के 100 से भी ज़्यादा गाँवों के लोगों को बुलाकर महापंचायत बुलाई जाएगी। लेकिन निषेधाज्ञा के बावजूद उस मंदिर के अंदर जो बैठक हुई उस पर प्रशासन का कहना है चूंकि ये मंदिर का प्रांगण है इसलिए 144 यहाँ लागू नहीं होती। लेकिन ये बैठक बहुत लंबी नहीं चली, आधे घंटे और 45 मिनट के अंदर ये हो तो गई बैठक, लेकिन उसके बाद एक अल्टीमेटम दिया गया इसमें जिसमें 20 दिन का समय दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार को, ये कहते हुए कि चूंकि मथुरा की जो लैब है उसकी जाँच रिपोर्ट जो आई है उसमें इस बात को कहा गया है कि वो जो मांस बरामद हुआ था वो बीफ है, तो इसलिए जो मोहम्मद अखलाक के परिजनों को जो मुआवजा दिया गया वो भी वापस लिया जाए और उन पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाए। तो अभी वैसे जो हालात हैं तनावपूर्ण तो जाहिर सी बातें हैं चूंकि महापंचायत बुलाई गई थी, इसको लेकर आशंकित थे लोग, लेकिन जो दादरी के SDM हैं राजेश कुमार सिंह, कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा
इलाके में पूरी तरह से शांति है, कहीं कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। एहतियाती कदम में ये है कि थोड़ा सा फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है यहाँ पे। हम लोगों का तो रेगुलर डायलॉग है उनके साथ है और हम लोगों का उनसे यही कहना है कि जो भी लीगल प्रोसीजर है उसमें आप लोग चले, और गांव के लोग तो एग्री हैं, थोड़ा सा बाहर के लोग अगर प्रोवोक कर रहे होंगे, दोनों पक्षों के लोग हैं, दोनों से हम लोगों का पूर्णतया कम्युनिकेशन है। तो लगभग 650 के आसपास केवल एक परिवार जो अखलाक का परिवार, ये थोड़ा सा अलग जगह था, ये चार भाई थे जिनमें से अखलाक और हजाल दो ही घर पे रहते थे, जमील लोनी में रहते थे और जान मोहम्मद दादरी में रहते थे। और दूसरे तरफ जिधर मस्जिद बनी हुई है उधर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पूरी है वहाँ पे।
ये अभी सुना आपने जो SDM कह रहे थे कि वहाँ कई और घर हैं मुसलमानों के, और अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। जाहिर सी बात है कि जब पहले रिपोर्ट आई थी घटना के फौरन बाद तो उसमें कहा था कि ये मटन है जो फ्रिज में से बरामद हुआ था, और अब उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि ये जो मथुरा के लैब की रिपोर्ट है ये उस मांस के बारे में है जो घर से नहीं बरामद हुआ था बल्कि सड़क पर जहां पर मोहम्मद अखलाक की लाश बरामद हुई थी वहां से बरामद किया गया था। और इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं और एक तरह से ये माहौल जो है वो काफ़ी गर्मा रहा है। लेकिन हाल ही में जो एक आपको पता ही होगा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान उस इलाके से आते हैं और उन्होंने भी बयान दिया है अपना जो एक पॉलिटिकल बयान है।
अखलाक के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं?
अखलाक के परिवार के लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल इसके पीछे पॉलिटिक्स है। उनका कहना है कि साहब कई जगह से मांस बरामद हुआ और पहले तो ये रिपोर्ट आ गई थी मथुरा के ही लैब से आ गई थी कि ये मटन था, फिर अचानक ये कैसे आ गया, और दबाव बनाया जा रहा है उन पर। ये जान मोहम्मद जो उनके भाई हैं मोहम्मद अखलाक के, उनसे भी मेरी बात हुई।
फैसले के लिए 20 बार दबाव बनाना, और कई जगह उन्होंने दादरी में भी हमें बुलाया अलग अलग जगह, वहाँ पे बैठ के बात की, हमने उनसे ये कहा देखो ये तो सब सरताज की बात है भाई, वो जिम्मेदार है लड़का अपने परिवार का, मुख्य पैरोकार भी वो ही है, बाप के बाद वो वारिस भी है परिवार का। अगर हम किसी का नाम लिखवाते तो चलिए हम गवाह भी होते, हम किसी को पहचानते, जब हम में से कोई सा भी भाई मौका वारदात पे नहीं है तो हम किसी का नाम क्यों लें? जानते हुए भी नहीं लिया, बस वही बच्चे बताएं जो पिटे हैं जिनके साथ हादसा हुआ, तो उन्होंने ही बताया साहब अपने बयानों में, ना ही देखिए मेरे सामने, मैं लड़के का चाचा हूँ, मेरे सामने कभी 164 के बयान भी नहीं हुए हैं।
तो सलमान, क्या महापंचायत खत्म हो गई है इस वक्त?
जी हाँ बिल्कुल, 30 से 40 मिनट या 45 मिनट मुश्किल से चली होगी बैठक ये, और प्रशासन का कहना है कि ये महापंचायत नहीं थी चूंकि बहुत कम लोग आए उसमें और मंदिर के प्रांगण में इतनी भीड़ तो हमेशा रहती ही है। और एक बात जो इसमें है वो ये है कि स्थिति तो तनावपूर्ण है ही, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि वो दोनों पक्षों से संवाद बनाए हुए बातचीत कर रहा है।
बहुत शुक्रिया सलमान रवीस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर जो है वो भी उत्तर प्रदेश से है। गुरुवार को मथुरा में हुई हिंसक वारदात में उत्तर प्रदेश ने आज पहली बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने मथुरा के DM और SSP का तबादला कर दिया, हालांकि विपक्षी दलों की ओर से इसकी मांग घटना वाले दिन से ही की जा रही थी। उधर आज मथुरा कांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया और मामले की CBI जाँच कराने की मांग की। बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी पहले ही ये मांग कर चुकी है। इस कांड को लेकर आज क्या कुछ हुआ, सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
मथुरा कांड में राज्य सरकार की चौतरफा हो रही आलोचना और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के नाम आने पर लगता है सरकार भी अब कुछ हैरत में आ रही है। सरकार की नाराजगी की पहली गाजगिरी DM राजेश कुमार और SSP राकेश सिंह पर, दोनों को हटाकर उनकी जगह तत्काल प्रभाव से नए अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। घटना के दिन से ही इन दोनों अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी की बातें की जा रही थी। खासकर SSP की निष्क्रियता की चर्चा सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो चुकी थी। इस बीच इस मामले में राज्य में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और CBI जांच की मांग की। बीबीसी से बात करते हुए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए।
ये कंप्लीट फेलियर है उत्तर प्रदेश सरकार का और समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही ये फल रहा था। मेरा सीधे सीधे आरोप है कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, लाचार है। कमिश्नर कलेक्टर के खिलाफ जांच की रिपोर्ट दे देगा। मेरा ये कहना है कि 3 साल के कलेक्टर और कप्तान सस्पेंड करके उनके विरुद्ध जांच होनी चाहिए और जब जांच होगी तब ये रट्टू तोता सा भेद खोलेंगे और शिवपाल रामगोपाल यादव जांच की परिधि में आ जाएंगे। और मथुरा में जो गुंडई 3 साल से चल रही थी समाजवादी पार्टी के संरक्षण में, रामगोपाल यादव के लड़के के चुनाव में गया था ये रामवृक्ष यादव।
भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यपाल को भी इस मामले में एक ज्ञापन दिया। इससे पहले इस मामले में बसपा नेता मायावती भी राज्य सरकार को घेर चुकी हैं और उन्होंने भी इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की। मायावती ने उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी की मिली भगत का भी आरोप लगाया है।
मथुरा हिंसक कांड को तो वर्तमान सपा सरकार द्वारा बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर व केंद्र की सरकार द्वारा भी केवल अपनी खाना पूर्ति करके इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लेना, ये सभी ये दर्शाता कि इस कांड के पीछे जबरदस्त जरूर दाल में काला है। इसलिए इस मामले की समयबद्ध न्यायिक जांच या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच होना बहुत जरूरी है, ये हमारी पार्टी की मांग है।
जानकारों का कहना है कि घटना के 3 दिन बीतने के बाद और वो भी जांच शुरू होने के 1 दिन बाद डीएम और एसपी का तबादला ये दिखाता है कि सरकार विपक्ष के दबाव में है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
पॉलिटिकल प्रेशर जब बिल्ट अप होने की वजह से, अब क्या और होता, तीनों हटा नहीं देते, उसे तुम हटा देते, कारण होते हैं हटाने के। एक ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है, दूसरा कारण है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, तीसरा कारण ये हो सकता है कि उनको बहुत देर में ये समझ में आया कि बाप रे बाप इतने लोग मर गए, तो तीसरा कारण इसलिए बहुत इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले समझ में आ गया था।
वहीं समाजवादी पार्टी इस मामले में किसी तरह के दबाव की बात से इनकार कर रही है। पत्रकार योगेश मिश्र का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को खास तौर पर उछालना चाहती है क्योंकि उसे इसमें कुछ वैसी ही संभावना दिख रही है जैसी कि लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में दिखी थी।
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मुजफ्फरनगर कांड हो गया था, बीजेपी ने उसको ठीक से इनकैश कराया था और बीजेपी तमाम ऐसे इलाकों में अपनी प्रेजेंस बनाने में कामयाब हुई जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या निर्णायक थी। बीजेपी इस पूरे मथुरा कांड को कुछ उसी लिहाज से हैंडल करना चाहती है, उसकी कोशिश उसी तरह इसको विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा बना दिया जाए। और चूंकि ये एजेंडा धर्म से भी जुड़ा हुआ है, इसमें बाबा जगदेव का नाम है, इसमें बेसिक राजनेता पॉलिटिकल पार्टी के दिग्गज लोगों का नाम है, तो बीजेपी को वो सारे सूत्र मिल रहे हैं जो मुजफ्फरनगर दंगों में मिले थे। डिफरेंस सिर्फ एक है कि यहाँ रिलीजन का वो पक्ष है, दोनों पक्ष थे मुजफ्फरनगर, यहाँ एक पक्ष बस है।
बहरहाल मथुरा में हुई हिंसा में 2 पुलिस अधिकारियों समेत अब तक कुल 25 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि हिंसा के बाद जवाहर बाग की जो तस्वीर दिख रही है और उससे जो पता चल रहा है उससे यही लगता है कि यदि ये स्थिति आगे भी बनी रहती तो कितनी खतरनाक होती। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज व मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
बीबीसी रेडियो पर आप दिन भर सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ और आइए अब जरा बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज जिनेवा में थे, वहां उन्होंने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच काले धन और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनएसजी में भारत को शामिल कराने के मुद्दे पर सहयोग के लिए बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने वहां के कारोबारी नेताओं को भी संबोधित किया और उन्हें भारत में कारोबार करने के लिए न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
कि सोलार इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी मेरे यहाँ लोग आए, सोलार के क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए मेरे यहाँ आए, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। जीएसटी का विषय हो, इप्टा का विषय हो, कानूनी परिवर्तन का विषय हो, तो पूरी तरह मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। जहां तक बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर, आज G20 समिट ने भी जो रिजोल्यूशन किया है, जिस रिजोल्यूशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इन सारी बातों में भी स्विस बैंक के साथ मिलकर के काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राष्ट्रपति जी के साथ बहुत ही सकारात्मक मेरी बातचीत हुई है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर पहले मैंने जिनेवा में भारतीय पत्रकार श्री रूपा मित्रा को फोन किया ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति और कारोबारी नेताओं से क्या बात हुई। तो उनका कहना था,
देखिए तीन प्रमुख मुद्दे थे। एक तो है हमारा जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हमने जो एप्लीकेशन दिया है तो उसका सपोर्ट लेने के लिए स्विट्जरलैंड से, और स्विस प्रेसिडेंट ने ये जाहिर किया है कि वो सपोर्ट करेंगे इंडिया का इंक्लूजन इनटू द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। फिर उसके बाद बात हुई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की एक एफ्टा स्टेट और इंडिया के बीच, विच हैज बीन स्टक सिंस 2008, उसको रिज्यूम करने के लिए डायलॉग उस पे। तो प्रेसिडेंट ने ये बताया कि एंड ऑफ नेक्स्ट वीक वो एक हाई लेवल टीम भेजेंगे इंडिया टू रिज्यूम टॉक्स ऑन एफ्टा। और थर्ड बात ये है ब्लैक मनी पे उन्होंने बात की है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको एक कॉमन प्रायोरिटी एरिया बताया और जल्द से जल्द टू ब्रिंग जस्टिस टू द टैक्स ऑफेंडर्स ये बोला। और नेगोशिएशन ऑन एन अग्रीमेंट ऑन ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन उसको स्टार्ट करने के लिए।
काले धन के मुद्दे पर क्या बातचीत हुई है, मतलब क्या लग रहा है कि स्विट्जरलैंड उन लोगों के नाम बता सकेगा या जाहिर करेगा जिन लोगों ने वहाँ धन छुपाया हुआ है?
उस पे ज्यादा उन्होंने बात नहीं किया है, तो बस इतना ही बताया कि हमारा ये शेयर्ड प्रायोरिटी है और एक जल्द से जल्द हम लोगों को एक अर्ली नेगोशिएशन स्टार्ट करना है अग्रीमेंट ऑन ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बस उतना ही बताया। और ज्यादा बाद में स्विस प्रेसिडेंट मीडिया से बात कर रहे थे आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट, पर उन्होंने भी ज्यादा कुछ डाइवर्ज नहीं किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात की और भारत आने का उनको न्योता भी दिया, तो इस मुलाकात में कितने कारोबारी थे और क्या लग रहा है कि उनके बीच में भारत को लेकर के कितनी उत्सुकता या कितनी उत्साह नजर आई आपको?
देखिए जो लगा वो पॉजिटिव लगा। करीबन 30-35 टॉप बिजनेसमैन थे जो मुझे दिखाई दिया, वो स्विस वॉच इंडस्ट्री से भी थे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से थे, नोवार्टिस से थे शायद। और बात करीबन 40 मिनट्स तक उनका एक इकोनॉमिक राउंड टेबल हुआ, तो न्योता उन्होंने दिया है आने के लिए, तो पॉजिटिव लगा। तो अभी तो वो जब एफ्टा के लिए जब चीफ नेगोशिएटिंग टीम जो जाएगी नेक्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, उसमें अब कुछ बिजनेसमैन भी शामिल हैं, तो उसके बाद ही पता चलेगा इफ इट ट्रांसलेट्स इनटू समथिंग कॉन्क्रीट।
जिनेवा में भारतीय पत्रकार श्री रूपा मित्रा बता रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान वहां पर क्या कुछ हुआ। और आइए अब एक और खबर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से। लंदन के एक भ्रष्टाचार रोधी संगठन ग्लोबल विटनेस का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान और दूसरे चरमपंथी समूह अवैध खनन के जरिए करोड़ों डॉलर की कमाई कर रहे हैं। ग्लोबल विटनेस ने नई रिपोर्ट में बदाखशां प्रांत में चल रहे बेशकीमती पत्थर लापिस लाजुली के खनन के बारे में बताया। रिपोर्ट में ये आरोप भी है कि खनन को लेकर होने वाली हिंसक होड़ से इलाके में अस्थिरता बढ़ी है। रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों पर, मेरा मतलब है अफगान अधिकारियों पर, आरोप लगाया है कि वे इस धंधे से मुनाफा कमा रहे हैं। पूरा ब्यौरा आपको सुनाएंगे अमर शर्मा।
भ्रष्टाचार रोधी संगठन ग्लोबल विटनेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक अनुमान के मुताबिक पिछले दो सालों में बदखशां प्रांत में चल रही अवैध खनन में तालिबान अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ाता चला गया और आज इस अवैध खनन से होने वाली कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा तालिबान की तिजोरी को भरता है। काबुल में पत्रकारों से बात करते हुए ग्लोबल विटनेस के एक शोधकर्ता स्टीफन कार्टर ने कहा कि इनमें से कुछ चरमपंथी सरकार के सशस्त्र समूहों से संबंध रखते हैं।
The mines themselves are in the hands of illegal armed groups.
ये खनन क्षेत्र अवैध हथियारबंद समूहों के हाथों में है और खनन कार्यों से होने वाला ज्यादातर मुनाफा उनके पास जाता है। इन समूहों में वे समूह भी शामिल हैं जो सरकारी हैं। सैद्धांतिक तौर पर वे सरकारी हथियारबंद समूह हैं, लेकिन हकीकत में वे इन खदानों और तालिबान से उगाही करते हैं।
अफगानिस्तान के बदखशां के खदानों से निकलने वाला बेशकीमती पत्थर लापिस लाजुली अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की खदानों से निकाले गए लापिस पत्थर से बना लॉकेट मेसोपोटामियन सभ्यता के सबसे पहले शहर यूआर की राजकुमारी के हार की शोभा बढ़ा चुका है। प्राचीन मिस्र में युवा फिरौन तूतनखामेन की शानदार अंतिम यात्रा में उनके मुखौटे की भौहें बनाने के लिए कारीगरों ने अफगानिस्तान की इन्हीं लापिस पत्थरों का इस्तेमाल किया था। बताया जाता है कि पुनर्जागरण काल में चित्रकारों ने लापिस पत्थर के अनूठे रंग को वर्जिन मैरी के कपड़ों को चित्रित करने के लिए आरक्षित कर रखा था। लापिस लाजुली पत्थर अभी भी गहनों और आभूषणों के लिए पसंद किया जाता है, लेकिन ग्लोबल विटनेस का कहना है कि जो असाधारण राष्ट्रीय खजाना पुनर्निर्माण और विकास के लिए एक शक्तिशाली संसाधन होना चाहिए, वो संघर्ष और शिकायत का एक प्रमुख कारण बन गया है। स्टीफन कार्टर ने कहा कि खदानों की खनिज संपदा के लिए हथियारबंद समूहों के बीच होने वाली होड़ बगावत को बढ़ावा देती है।
इस वक्त वहाँ के हालात ऐसे हैं कि इस संपदा के लिए सशस्त्र समूहों के बीच प्रतियोगिता छिड़ी हुई है। इससे ये होता है कि ये एक ऐसी आदर्श स्थिति को पैदा करती है जहाँ विद्रोह पनपता है, वहाँ थोड़ा बहुत संघर्ष चलता रहे इसमें सबकी दिलचस्पी है, सरकार पूरी तरह से खोखली हो जाए सबकी रुचि इसमें है।
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक अफगानिस्तान में लगभग $1 ट्रिलियन मूल्य का खनिज भंडार मौजूद है, जो इस गरीब देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन बड़े नेताओं और चरमपंथी समूहों की साठगांठ से चल रहा अवैध खनन इस देश की असाधारण संपदा को लूट रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक लापिस लाजुली समेत तमाम खनिज संपदा से होने वाली कमाई तालिबान के लिए अफीम से होने वाली कमाई के बाद दूसरा सबसे बड़ा आय का साधन है।
बेशकीमती खनिजों के अवैध खनन से पैसा कमा रहा है तालिबान। रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा। बीबीसी के कार्यक्रमों पर आपकी राय उन्हें बेहतर बनाने में हमारी मददगार होती है और साथ ही आपसे सीधे संवाद का भी मौका मिलता है। तो आज आपने क्या कुछ लिखा है, सुनते हैं आपकी चिट्ठियों में। लेकर आए हैं वंदना और राजेश जोशी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ वंदना।
वंदना मेरे साथ हैं, बहुत दिनों बाद हम शायद साथ साथ प्रसारण कर रहे हैं वंदना जी। और मैं देख रहा हूँ कि आप मुस्कुरा रही हैं एक पोस्टकार्ड को देख करके। ऐसा क्या लिखा है इन्होंने कि
एक तो पोस्टकार्ड को देख के वैसी मुस्कुराहट छा जाती है
जी।
ये लिखते हैं, ये है गंगा सिंह रावत, रामपुर रोड नंबर 11 हल्द्वानी से। इन्हें IAS टॉपर टीना डाबी, जिन्होंने IAS में अभी टॉप किया है, उनसे मुलाकात इनको पसंद आई और इन्होंने शुभकामनाएं भी भेजी हैं उनको।
बहुत बहुत धन्यवाद रावत साहब, आप तो हल्द्वानी के रहने वाले हैं जो कि मेरा भी घर है, तो कभी मुलाकात आपसे हो अच्छा लगेगा।
अगला जो ईमेल है वो है पांडेपुर वाराणसी से के मिश्रा साहब का। ये कहते हैं कि मेरा तीसरा ईमेल है, विश्वास है शामिल तो नहीं करेंगे।
शामिल नहीं करेंगे, लेकिन साहब आपका विश्वास तोड़ दिया हमने।
कह रहे हैं कि क्यों हिंदी शब्दों का प्रयोग आप लोग कम करते हैं, परहेज करते हैं। उन्होंने मिसाल भी दी है ODI ओपनिंग बैट्समैन, तो एक दिवसीय क्यों नहीं बोल सकते, सलामी बल्लेबाज क्यों नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि संदीप सोनी जी ने कार्यक्रम किया और कहा स्टोरी कवर करने के लिए मौजूद है, तो हिंदी से इनकी।
ये कहां के रहने वाले हैं?
वाराणसी के।
जी, वाराणसी से ये चिट्ठी आई है। जाहिर सी बात है कि हिंदी के प्रति आग्रह आपका बहुत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ये कुछ फैशन सा, ये कुछ रवायत सी चल पड़ी है कि हमारी बोलचाल में भी अंग्रेजी के शब्द बहुत आते हैं, प्रसारण में भी आने लगे हैं। आज से मुझे याद है 10 साल पहले शायद इस तरह का नहीं था। ये हमारी गलती है, और दूसरी तरफ अगर इसे गलती ना माना जाए तो ये शायद भाषा का एक तरह से चरित्र होता है। कई बार उसमें अनचाहे कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको अगर शामिल ना किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसका ध्यान रखेंगे।
बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं, मुक्केबाज मोहम्मद अली जिनकी मृत्यु हो गई,
महानतम मुक्केबाज जिनको
कहा जाता है, उनको लेके बहुत सारे श्रोताओं ने चिट्ठी लिखी है। मलकापुर जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से एहसान असगर लिखते हैं कि BBC टीम को धन्यवाद, उन्होंने इंडिया बोल का समय बदल दिया। बिहार से 17 वर्ष के हमारे श्रोता है सत्यम सिद्धार्थ, उन्होंने भी कार्यक्रम की काफी तारीफ की है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कार्यक्रम पसंद आया। मोहम्मद अली के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही होगा, क्योंकि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं, चाहे वो भारत में हों या अमेरिका में, इसीलिए हम सभी का सिर श्रद्धा से झुक जाता है।
जी बिल्कुल, आगे बढ़ें तो ये ईमेल है कासगंज उत्तर प्रदेश से, गंज डुंडवारा ग्राम अलहपुर, सौरभ कुमार 12वीं के छात्र हैं और कहते हैं कि
ये वंदना जी ये क्या बात है, आजकल हमारे नौजवान श्रोता चिट्ठी लिखने लगे हैं।
ये बहुत अच्छी चीज है।
कितना अच्छा रहे कि हमारी ऐसी अगर जो स्कूल जाने वाली कॉलेज जाने वाली छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं,
वो भी लिखे
तो हमको तो बहुत अच्छा लगेगा।
जी
क्या लिखते हैं?
ये लिखते हैं, इनका अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी शिक्षा व्यवस्था है और नकल माफिया जो है कॉलेजों में उनकी दबंगई है, उस पर रिपोर्ट जरूर करें।
सौरभ कुमार साहब, आपकी ये जो सलाह है हमने नोट कर ली है। शिक्षा के स्तर पर हम एक जरूर कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे आने वाले दिनों में, इंतजार कीजिए।
जी, तो ये तो थे 12वीं के छात्र। अगला जो मेरे पास पोस्ट कार्ड है, प्रताप नारायण, ये 76 वर्ष के हैं और बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं सेवा, बोले तो 1960 से सुन रहे हैं
जी।
इंडिया बोल जो हुआ था मोदी के शायद 2 साल की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप मोदी जी की वक्ताओं ने उस कार्यक्रम में खूब खिल्ली उड़ाई। भगवंत मान साहब बोल रहे हैं तो भगवंत मान से शायद इनका मतलब होगा
जी, आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे। जी हाँ, उस कार्यक्रम के बारे में हमारे पास कई चिट्ठियां आई हैं, कई श्रोताओं ने अपनी आलोचना हम तक भेजी है कि उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को शामिल नहीं किया गया। दरअसल हम उम्मीद कर रहे थे कि जो हमारे श्रोता हैं वो मोदी के 2 साल पूरे होने पर अपनी राय जाहिर करेंगे, उनको कितनी खुशी हुई है, कितना हासिल हुआ है, लेकिन इत्तेफाक से एक भी श्रोता ने मोदी सरकार की तारीफ नहीं की।
अक्सर कार्यक्रम में हर तरह की राय रहती है, तो वो कार्यक्रम कुछ ऐसा बन गया
जी।
अगला जो ईमेल है अमरीका से आया है, सीधा कोलोराडो से, और हर्ष द्विवेदी इनका नाम है। इनका कहना है कि पंकज प्रियदर्शी के कार्यक्रम प्रसारण का तरीका बहुत ही पसंद है। कहना पड़ेगा कि उनकी आवाज में गजब की ऊर्जा है। सुबह दफ्तर जाते समय मूड तरोताजा हो गया जब ये कार्यक्रम सुना।
देखिए सब, अमेरिका कोलोराडो से हमारे श्रोता हमें चिट्ठी लिख रहे हैं। हर्ष त्रिवेदी नाम बताया आपने
जी।
तो हर्ष साहब, आप लगातार हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमारे कार्यक्रमों में एक श्रोता की हैसियत से शामिल हों।
आखिरी एक शिकायत की है शोलापुर महाराष्ट्र से हयातमंद पठान की। मराठी फिल्म सैराट की इतनी चर्चा है पर आपके यहाँ जिक्र तक नहीं हुआ।
इसका जवाब तो वंदना जी आप ही देंगी, क्योंकि योजना आयोग जो है बीबीसी हिंदी सर्विस का, उसमें आप हैं, तो आप बताइए कि इसमें क्या।
नहीं बिल्कुल, और फिल्मों में मेरी खास रुचि रहती
है, जी हाँ।
बहुत तारीफ हुई है क्रिटिकली भी, तो जरूर कोशिश करेंगे कि इनके डायरेक्टर से एक लंबी बातचीत हो
और इस फिल्म के बारे में अपने श्रोताओं को बताया जाए। अभी हमारे पास इतना ही वक्त है वंदना जी, माफ कीजिएगा।
नमस्कार।
और आपकी राय के बाद आपको बता दें कि सुशील कुमार के रियो जाने का सपना टूटता नजर आ रहा है। नरसिंह यादव की दावेदारी पहले से ही मजबूत लग रही थी, अब कोर्ट ने सुशील की याचिका खारिज कर इसे और मजबूत दे दी है। आदेश कुमार से बढ़िया इस बारे में और कौन बताएगा, सुनिए ये रिपोर्ट।
And the gold medal goes to Japan, to Tatsuhiro Yonemitsu. Tatsuhiro Yonemitsu of Japan takes the gold medal and Sushil Kumar of India will have to settle for the silver.
ये लम्हे थे साल 2012 लंदन ओलंपिक्स के, जहां कुश्ती के 66 किलो वजन वर्ग में भारत के सुशील कुमार फाइनल में जापान के तात्सुहिरो योनेमित्सु से हार गए, लेकिन इसके बावजूद वे रजत पदक जीतकर इतिहास बनाने में कामयाब रहे। इससे पहले वो बीजिंग ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीत चुके थे, लेकिन उनके रियो जाने की उम्मीदों को आज तब बड़ा झटका लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 74 किलो भार वर्ग में नरसिंह यादव से ट्रायल की मांग की थी। इस पूरी स्थिति को नरसिंह यादव के वकील प्रमोद कुमार ने साफ किया।
दो ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, एक तो ये है कि रिट कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती इन द फंक्शनिंग ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन, दे आर ऑटोनोमस बॉडी नंबर वन, और प्रिपरेशन एडवांस स्टेज में है ओलंपिक की। इस स्टेज पे किसी भी तरह का ट्रायल होल्ड करने से देश की जो पॉसिबिलिटी है, प्रिपरेशन है, वो इफेक्ट हो सकती है, प्लस इंजरी के भी बहुत ज्यादा चांसेस है।
दूसरी तरफ सुशील कुमार के गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार और साल 1982 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सतपाल अब इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं।
पूरा विचार चल रहा है इस पे कि डबल बेंच में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो जो भी होगा वो उसको पढ़ के, लेकिन ये खेलों के लिए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक इस लेवल का खिलाड़ी देश को जिसने उस मुकाम पर पहुंचाया और एक ट्रायल ही तो मांग रहा है, वो ट्रायल भी जब मांग रहा है या उसको उसी दिन कह देते आप जिस दिन नरसिंह ने क्वालिफाई किया, उसको बुला के बता देते भाई आप सुरक्षित बैठिए, आप तैयारी मत करो, तो वो क्यों करता।
दरअसल नरसिंह यादव ने पिछले साल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ ही 74 किलो भार वर्ग में रियो का टिकट हासिल कर लिया था, लेकिन सुशील कुमार का कहना था कि कोटा देश को मिला है, खिलाड़ी को नहीं, और वो कंधे में चोट के कारण किसी ओलंपिक क्वालिफाइंग में हिस्सा नहीं ले सके थे। अब वो पूरी तरह फिट है, ऐसे में ट्रायल के माध्यम से ही किसी को रियो जाने का अवसर मिलना चाहिए।
आदेश कुमार गुप्त की इस रिपोर्ट के साथ ही कार्यक्रम खत्म होने को है। आखिर में सुन लीजिए प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार गुजरात के अहमदाबाद की एक विशेष अदालत गुलबर्ग सोसाइटी केस मामले में 9 जून को सजा सुनाएगी। अमेरिका में वैज्ञानिक जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सुअरों के अंदर इंसानों के अंग तैयार करने की कोशिश में है। जॉर्डन की सरकार ने देश की खुफिया एजेंसियों के स्थानीय दफ्तर पर हुए हमले को चरमपंथी हमला बताया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय, और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं तिलक भाटिया। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।